ప్రాణాయామం తస్మై శ్రీగురువే నమః నమో మహాభగన్నాయ కృష్ణే जगत में साधन के समय के लिए ऐसा कर अपराध जैसे कि किसी का किसी एक विषय में लोप हो, ये भी समझ रखो, जिसके अंदर में जिस चीज की पोटेंसी है उसको उसी तरह का ही लोप आएगा ना? वो किसी दूसरे रूप से नहीं आएगा।
पहले संस्कृति में
अच्छा लगता है,
नहीं पहले संस्कृति में बताया गया
है समझाएं सकती, यदि वैसी अपनी कृपा कर रहे तो उस स्थिति में पहुंच गए तब हो सकता, अन्यथा भी जितना चित भाव प्रकट नहीं होगा लाख चेष्टा करे समझ में तो खुदलापन बनेगा। इसलिए जहां तक ये लोग समझाने की चेष्टा कर रहे हैं और हमारी पात्रता है वहीं तक और भजन करके इन चीजों को भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से इसको उपलब्धि करने की
चेष्टा। अभी साधन के दृष्टि में साधारण रूप से लोग साधन भजन कर रहे हैं और बहुत से लोग देखा जाता है कि बड़े दादा जी के भक्तन करके और उपासना कर रहे हैं, वो भी रस में कोई बासल रस में कोई शक्कर रस में कहते रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है
किसी किसी का नहीं है, किसी किसी का था उन लोगों को जब निकट आते हैं बाहर
तो पता नहीं चलता है कि स्थायी भाव हो गया है या नहीं। स्थायी भाव
में अधिकांश लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो मायावादी,
हाँ
मायावादी तत्व है, उनको कोई रस से कोई तत्व से कोई संबंध, जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है और वो उस रस में प्रतिष्ठित हो जाएगा जो कभी नहीं पसंद तत्व ज्ञान नहीं कहें, अथवा यदि वो प्रकट हो गया वो भाव तो ये अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा जैसे कोई किसी को रूप हो लोग होता है मैंने हम पता रुचि के समय रुचि से पहले ये लोग वहीं से होता है, अब एक भक्त को रुचि से आरंभ किया भक्ति लोग से राधा मुदा से, इसका मतलब है कि वो पहली श्रद्धा फिर साधन फिर श्रद्धा गुरु का तत्व ज्ञान ये सब आकर के भजन करके अन्नखंड वृद्धि की जो अवस्था आएगी निष्ठा आ जाएगी और निष्ठा के बाद में जो रुचि होती याद तक उसने पार कर लिया, उसके अंदर में जो कुछ देखने जाता है उसमें रुचि वाले में आ गया है, ये ऐसा नहीं कि वो अंधा है उसको तत्व ज्ञान कोई कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लोग भी आपके पुराना के कृष्ण में वो मिल जाना चाहता है तो ये कहा हुआ, इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए वो कभी भी अंधा नहीं, उसको तब तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा, वो पता नहीं ज्ञाने प्रयास जीवंत काम हो रही है इसका तात्पर्य सतान प्रसन्न विद्य संविदोषाय अपने आप ये कर्म आएगा, तत्व ज्ञान लोग होने लगा तो इसका मतलब है जैसे ये सब पीछे हो गई इसको पार करके तब वहां पर गया है तब वो रति हुई है और सब हनुमान जी बंदर है, बंदर जैसा भी सेवा करते हैं उनमें कोई भी तत्व ज्ञान इत्यादि कोई पूछे नहीं है, ऐसा होगा आप उसमें समस्त तत्व ज्ञान भरा पड़ाया मुक्त तक होने तक जो कुछ है सब सब तो बंदर नहीं है और अपराधी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं, सब समर्थ है मुक्त है, वो कितने साधन किए होंगे ज्ञानित परिकर हूं वो शंकर जी हैं, इसलिए उनमें सब कुछ एकदम है, नीचे के जितनी भी चीज है तो बंदर भी हूं है
ভাব যখন প্রকাশিত হয় তখন কি হয় না রসমুখে তাকে চমৎকারিত এবং বিস্ফারিত তখন হয়ে যাবে তার রসমুখে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।
আর আধুনিক এই সাধু স্বামী ইত্যাদি করার সংস্কার এই দুটানিত হয়ে তারপরে
এখানে যেমন ভাবে লক্ষণে দেখানো হয় যে শান্তির অবস্থায় চালকম বিরক্তির মানুষ উন্নত এসব লেখন যা উদয় হতে গিয়ে দেখা যায় সব সঙ্গে যায় কি ভাব ভাব নেই তো ইয়ে ভাব নেই ইয়ে তো প্রতিবিম্ব ভাব হয় ইয়া ভাব ভাষ ইয়া ভাব বুঝতে হ্যাঁ ভাব প্রতিবিম্ব মানা যায় ভাব নেই ऐसे রতি মে ভি ইয়াহ পর কহা গিয়া হ্যায় পহলে স্থায়ী ভাব সে ইয়ে রতি
এক আদমি এক লড়কি আর এক লড়কা पता कि हमको राधा जी की दासी होना चाहिए और विवाह करने के लिए छटपट छटपट कर रहे हैं कब विवाह जाए कब विवाह अच्छा तब भाव हुआ कि नहीं और लोग हुआ कि नहीं ये सीधी सी बात
है उज्जवल लिंग ने दिखाया छोटी सी बालिका है तो ये कभी कृष्ण को बासल भाव से देखते हैं
कृष्ण के अतिरिक्त
अभी उनके
उनके अंदर में कोई भी किसी के प्रति भी कुछ नहीं आएगा सब कुछ हुआ आज अभी अभी मन इधर उग रहा बल उग रहा भीषण में क्रोध है काम है ये सब चीजें परिपूर्ण मात्रा में तो कहां ये सब हुआ इसलिए वो सब बेकार की वो आभास भी नहीं है वो कुछ नहीं वो संसारिक चीजों के समान उसको मान करके उसमें कुछ आनंद खुलता है भक्ति का निराला ही स्वभाव इसीलिए मैंने यहां पर ये कहा था ये भाई ये सब सिद्ध अवस्था की चीजें मुक्त सिद्ध परिकरों की बातें यहां पर हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि पंच से भी किसी को इसीलिए हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं रामानंद विशाखा और महाप्रभु जी कृष्ण उन दोनों में बातें हो रही हैं और उसकी बातें हम लोग यहाँ पर अनुशीलन कर जब ही थोड़ा सा भी छींटा हम लोगों को करना पड़ जाए तो हम लोग तक बहुत खुशी अभी यही चीजें जो हम लोग पढ़ सुन रहे हैं अभी आज से हमने पहले बहुत बार पंखा पहले इसको पास की समय में थोड़ा सा कुछ कुछ समझने की चेष्टा कर अब इस बार हम लोग कर रहे हैं तो विशद रूप में व्याख्या भी कर
इस बार तो आप उज्जवल मणि के और
के समझाने के लिए ये सब किया इसके प्रसंग जो लोग समझे यदि इसके बाद में हम लोग फिर कभी करेंगे तो तुम लोग भी इसको इस रूप में न सुन करके दूसरे रूप में सुन आज जो पहले बात सुनेंगे उनके दशा समझ में नहीं आए दशा ध्यान तो हम लोगों ने मई भक्त ही भूता राम अमृत का भगवान के प्रति जो भक्ति होती है ये कृष्ण का रहने गोषियों से हमारे प्रति जो भक्ति है अमृत त्वाय कल्पत अमृत त्वाय बतलाया मुक्ति से किंतु ये मुक्ति वो निर्विशेष मुक्ति नहीं स्वरूप में स्वरूप में दर्श की वाणी से बदला और जन्म वाणी से सदान साधु भक्ति से ही क्लेश रत्नि है ये क्लेश रत्नि का होना ही इसलिए वैष्णव मात्र को ही दृष्टि से देखना चाहिए वैष्णव मात्र कौन वैष्णव देखने को होना चाहिए
तो वो लोग यहां अमृत से मुक्ति को तो मानते
हैं वो तो हमारे प्रति स्नेह हो ये प्रेम सदा भक्ति से ऐसा ही होगा जिसके सभी हो जाएगी और सब सुविधा हो जाएगी तो ये संसार से विमुक्ति विशेष रूप से मुक्ति ये साधारण भक्ति का नामाभास का फल नामाभास से कोई वैकुंठ में नहीं जा सकता अभी कोई प्रश्न कर रहे थे स्कूल वाले लोग जो लिखाया है नाम चिंतामणि में एक आदमी ने व्याख्या करके ये नामाभास से एकदम वैकुंठ मिल जाए ये गलत है कभी भी बैकुंठ नहीं होगा, उससे मुक्ति हो। मुक्ति माने क्या? जन मरण का ये जो भाव है यह सब जगत जन मरण में संसारिक दुख सुख मान अपमान इत्यादि किसी में डूब रहे हैं हम लोग इस माया से। ये शरीर में रहते हुए भी हो जाएगा सर्व सिद्धि नहीं है, सब हो जाएगा। अजान का यही हुआ, उसने नाम नाश किया अपने पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया और इसका इतना फल है वो नहीं जानता था, किंतु गुरु अपने गुरु जी से वो जान, उनके गुरु कौन है? उन्होंने इसके पहले कभी किसी से इस विषय में नहीं सुना। अच्छा, उन्हीं के वचनों में इसका दृढ़ विश्वास हो गया और उन बातों को सत्य समझा। क्यों? उनके सामर्थ्य को देखा, इन्होंने हमारी मुक्ति करा दी, इन जमदूतों को भगा दिया और शक्ति हमारी रक्षा कर दी, अब इनसे बढ़कर के कौन होगा? इसी प्रकार से गुरु ने कुछ गुरु को आपको देखता है तब उसकी श्रद्धा नहीं तो वो कल तवानान वर्ष देखा तो उनको दिल श्रद्धा मिली, देखा कि हमारी मृत्यु से भी रक्षा कर दी और जमदूतों को भगा दिया, बस उनके वचनों में दृढ़ विश्वास होता, बस गुरु का अनुभव है, उनको अपना मान लिया, मन का शक्ति के बच गया तो वहां से हटता और तब फिर भक्ति का अनुशीलन किया, नाम करते 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 नाम भाजते, फिर धीरे 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 शुभ होने से धीरे धीरे उसकी श्रद्धा कम सब भावावस्था में पहुंची और उसके बाद में प्रेम होगा तभी बैकुंठ में जाएगा, बिना प्रेम के कोई नहीं जा सकता, ये शुभ नाम के ऊपर, इसलिए वो शुभ नाम हुआ और तब इसके बाद में प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रेम के द्वारा तब फिर बैकुंठ।
यानी साधु को चाहे कितने बार ही जन्म लेना पड़े, सिद्धि जब तक नव तब तक
आना होगा, वो नवभाग का भी आना होगा, भले मुक्त है स्वरूप किंतु वस्तु शुद्धि की नहीं, उसकी तो वस्तु शुद्धि का विचार है, जो बैकुंठ के रूप आए और बैठा करके विमान में और बैकुंठ में ले और उसको सर्व मुक्ति चतुर्भुज होकर के गया उसमें सालों को भी मुक्ता हो गया और प्रेम सेवा उत्तरा हुआ कि क्या हुआ इसका उम्मीद, प्रेम सेवा उत्तरा का होने के लिए कुछ और चाहिए, प्रेम सेवा उत्तरा नहीं हुआ क्यों? उसके लक्षण से मालूम होता है, उन्होंने कोई रसिक प्रश्नों का हनुमान इत्यादि का किसी का आनंद नहीं किया, या नारद जी का, यदि नारद जी का श्रम हो गया होता तो पता हो सकता है। अच्छा, इसलिए भगवान की जो भक्ति है, यहां पर भक्ति माने साधन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, अथवा यहां पर साधन में वैदिक भक्ति के लिए यहां पर वह भक्ति साधन वैदिक भक्ति, उसके द्वारा ये अनुभव हुआ फिर उसका जन्म मरण नहीं होगा भक्ति के द्वारा, किंतु और लौकिक तो हमारे प्रति प्रेम है, स्नेह ममतायुक्त प्रगाढ़ प्रेम है, ये कहता है भौतिक नाम मदापन हमारे से तुम्हारी प्राप्ति करा देगा, मिलन करा देगा, यह प्रेम ये स्नेह गोपियों को बड़ी पसंद होता है। किंतु कृष्ण वहां पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी कर दी, कृष्ण ने उदाहरण दे दिया कि जैसे वायु सर्वत्र ये शरीर में आग भी सर्वत्र है, इनको मथन करने से तक वो प्रकट, ऐसे मैं सबके अंदर में हूं और धन इत्यादि के कारण बताया जाता बस गोपियों को रोष हो गया, तब उन्होंने आयुष्य ननि नाग पदारा जिंदन जोगेश्वर बोधई संसार को पति तो करना अवलंबम देहम सहमति मनुष्य इनका ये बतला रहे हैं गोपियों का जो प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ है। प्रसन्न बचपन ये तपस्या इसमें स्नेह को दिया है। भगवत प्राप्ति के लिए स्नेह अत्यंत आवश्यक ममत्वयुक्त अत्यंत अधिक ममत्वयुक्त जो स्नेह है जो भक्त पहले द्रवित हो जाए और उनको देकर के कृष्ण भी प्रवित बिना द्रवता के स्नेह वो मिलते नहीं। प्रेम से भी लुकाछिपी करेंगे लुकाछिपी रहेंगे किंतु स्नेह ज्ञान हुआ ताकि प्रवित हराश में भी यही गोपियों का चित्र द्रवित हो गया आगे और उनको देकर के कृष्ण द्रवित होकर के समय मान काम गुजर जब पहले हम लोग आलोचना कर रहे हैं उसके बाद में बतला रहे आप प्रसन्न पक्षी लगा रहे हैं कृष्ण ने प्रतिज्ञा दीर्घ सब बता रहे आज ये देखे बड़े कृष्ण तारे बड़े पैसे कृष्ण की एक प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा ऐसी है दृढ़ वो टलने वाली नहीं है जो सबका लिया है सबका मैंने केवल कलयुग के लिए नहीं द्वापर युग के लिए ही नहीं त्रेता युग और सत्य युग और इससे अतीत कालातीत भी कालातीत भी उस सब समय के लिए हमारी एक दृढ़ प्रतिज्ञा है कृष्ण ऐसा कर हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा वो कभी टल नहीं सकती। ये देश है भक्त जो जैसा कृष्ण को भजन करते हैं कृष्ण तारे भजे कैसे कृष्ण उसको उसी रूप में भजन माने यहां जैसे भक्त जिस भावना से उनका भजन कर रहा है कृष्ण भी उसके उस भजन के भाव को पूरा कर ये भजने का अर्थ ये भी है कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियां घर का काम सब छोड़ करके बंसी की ध्वनि सुन करके आई और कृष्ण उनको कैसे भजन किया जिस अभिलाषा से वो आई थी उस अभिलाषा को पूर्ण किया इसका तात्पर्य हुआ ये भजे कृष्ण तारे इसलिए कहा ये जथान माम प्रपद्यन्ते आगे बताए ये जथान माम प्रपद्यन्ते ताम सतयो भजामि जो एक आना भजन करेगा एक आना ही उसका भजन करेगा वो भी जो सोलह आने में से चार आना भजन करेगा तो वो चार आना यदि कपटता तो वो बहुत कोई भजन करता है तो कृष्ण कपटियों के भी फूट है कपट शिरोमणि में कोई अर्थ के लिए करता है तो उनके सामने गणेश जैसा प्रकट होकर के उनको कोई विवाह इत्यादि चाहेगा तो उनके सामने में वो दुर्गा होकर के
जो जो जान जान श्रद्धा अर्चित
जो जो मैंने जैसा जैसा करता है और उसी रूप में कृष्ण वैसे ही बन करके और वैसे ही लोगों में प्रेरणा करके देवताओं में उनकी इच्छा को कभी स्वयं करते हैं कभी लोगों के माध्यम से कराते हैं। एक ही बात में मैंने गया किसी प्रतिनिधि को भेज दिया तो वैसे कृष्ण अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उनकी इच्छा को वो पूर्ण कराते। यदि कोई मित्रों की पूजा करता है तो वो क्या करते हैं पितृलोक में उनको पहुंचाते हैं देवता देवान हमारा जो उपासना जो देवताओं की उपासना करता है उनको देवलोक से पहुंचा करके देवताओं से मिला करके देवताओं के समान ऐश्वर्य इत्यादि की बात जो पितृयों की सेवा करता है भजन करता है उनको पितृलोक में उनको जो पतिव्रता है उनको पतिव्रता लोक में प्रेरित करते उनको वहां का भोग कराते किंतु हमारा जो भजन करेगा वो हमारे पास ही
जाएगा
हमारा जो भजन करने वाला वो हमारे पास है किंतु और एक साथ ही साथ की बात कह दी और जितने हैं वो सब आप सब लोग भ्रमण करते रहेंगे, आप ब्रह्म भुवाना लोक ब्रह्मा का इस लोक में उस लोक में आते जाकर रहेंगे जन्म मरण के चक्कर में। किंतु हमारा यदि जो उपासना करता हमारे लोक में चला गया उनका तो कभी भी पतन नहीं। मानो सकते तू कंपेयर पुनर्जन्म और क्या है जब मारना जाकर कभी नहीं लौट वहां जाकर के फिर लौटना नहीं होता और सब जगह से लौट आना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण तुम्हें किस रूप में किसी किस रूप में कभी जैसे कैसे सबको इच्छा को स्मरण करा दे जैसा वो भजन करेगा। यदि कोई कह दिया प्रभु मैं आप में मिल जाना चाहता हूँ आप में विशेष निराकार आप में कोई आता नहीं आप उसमें मैं भी करें ये अच्छी बात है उसको इंजेक्शन दे देते हैं जैसे आप तुम्हें समझ लो जो टाइम
देखिए
इसी का नाम है मैंने उसके चेतनता का तो कुछ समय उसमें हर प्रकार देते हैं वो समझता है कुछ भी नहीं समझता मैं हूं या इसी को कहते हैं ब्रह्मशाली। भगवान हजार चेष्टा करें तभी भक्तों भक्त ये नहीं कहता और संसार के जितने लोग हैं ये नहीं चाहते। यहां तक कि हम लोगों में भी हिम्मत माला हम लोगों की है वैष्णव है दीक्षा भी ले लिया खूब पाठ के साथ 1-2 हजार रुपया दीक्षा में खर्च किया बहुत लंबा हवन करवाया लंबा जब तो कभी फिर लिया और पूछा जे भाई भजन करते करते अंत में हम लोग भगवान में मिल जाएंगे तो हमारा विचलित परिवर्तन समझ को कोई ज्ञान नहीं। तो जो लोग हरिनाम तो करते हैं और वैष्णव का तिलक धारण भी करते हैं सब कुछ करते हैं और हरि कथा नहीं सुनेंगे वैष्णव के मुख उनकी यही दुर्गति हो सकता है कोई मायावादी न बन जाए कर्मी न बन जाए ज्ञानी न बन जाए। इसलिए हरि कथा को सुन करके फिर शुद्ध नाम जो करेगा शुद्ध रूप में हरि कथा सुनेगा उसी को प्रेम होगा और वही वहां पर जाएगा अन्यथा कोई नहीं जाएगा। बहुत दुर्लभ चीज है इसलिए भगवान का ये नियम है प्रतिज्ञा है हमारा जैसा जो भजन करता है मेरे पास में राम का कर्म की धर्म का कर्म राम का कर्म करता है धर्म का कर्म धर्म का राम का भजन पक्का कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। जो जैसा भजन करेगा कपट से रह करके कर्मनिष्ठा सतान निष्काम भक्ति युक्त प्रेमा भक्ति युक्त ब्रज के भाव को लेकर के उसका सबका वजन वो कर लेते और वजन के परिवार ही में उसको वो चीज दे देते किसी कारिणी नहीं रहते
डरने नहीं मारेंगे
किसी ना कोई तो कपटता है मैं तुम्हारे पर बड़ी कृपा बहुत बड़ी भारी कृपा और वहां पर गंदी माती हूं वंचित कर दिया उसको छदमी है पूरे यदि तुम्हारा चिंता अच्छा है तो तुम भी छप गए वही कहते हैं किंतु एक जगह वो छप जाकर नहीं दे जाए अमृत फल नहीं देता वो बैकुंठ तक वजन करके सबको ठीक कर देते हैं द्वारका तक में भी सबको ठीक कर देते सखा लोगों को भी उचित उनके प्रेम का जो उसके प्रतिदान है उसको भी सखा दो सखा अपने कंधे पर कृष्ण को ले जा रहा है तो कृष्ण क्या करें अब तुम थक गया तुम हमारे कंधे पर बैठ लो वो जितना ले गया था उसे एक इतना एक हाथ और आगे पहुंचा है उसका ऋण शोधन मैया का भी ऋण शोधन कर देंगे किंतु एक जगह लाचार हो जाता कहा बस किसी जो अभी प्रेम को बतला था एक प्रेम अनुरूप ना पाए कभी थे पते वही नहीं है पते भाव इसलिए श्रीमद भागवत में कहा गया न पा रहे हम निर्भर दर्शन न पा रहे मैं कभी भी ऋण नहीं चुका सका न सकता हूं ना सकूंगा ना चुकाया न चुका सकता हूं वर्तमान में भी और भविष्य में भी नहीं चुका सकता तुम्हें का इसलिए
सेवा करती तो उनके पास वही बुद्धि को नाम लेते हैं कि कहां तक है
वहां पर था बांस लगाया नीचे तक सारी नहीं मिली उस प्रेम का गोपियों के प्रेम का था नहीं मिला तो रूपदेव जब था मिलता था तो उसमें बार बार खोल देते और उनका पलरा और ये भी है ना तो वहां पर भागना सहन कार्य पर टूट जाता है इसलिए वजन ठीक से नहीं कर पाते इसलिए वो बराबर तक भी नहीं पाते पता है क्यों कहते इसलिए कहा निर्भर दर्शन तुमने का हमारे प्रति जो मिलन है तुमने हमें जो प्राप्त किया तुम्हारा जो हमसे मिलन है या तुम हमको जो प्रसन्न करने के लिए सेवा करती है यह कैसा है निर्वर्ध निर्वर्ध किसको कहते हैं जिसमें कहीं भी कोई स्टॉक न कोई भी दान कोई भी कमी पूर्ण रूप से सुख जैसे एक सोना को एक बार आग में जला दिया गया तो हो सकता है कि उसमें कुछ निर्मलता में कमी हो कोई स्टॉक बढ़ गया और उसको लखदान यदि हो किया गया हो लखदान मैंने क्या एक लाख बार उसे आग में तपाया निकाला फिर तपाया फिर और कोई भी संभावना इस तरह से हमारा तुम्हारा जो प्रेम परस्पर का मिलन है ऐसा निर्भर परम विश्व
लखवान माने एक लाख बार जो है
इसका मन कर होता नहीं कहा इस प्रकार से हमारा तुम्हारा मिलन है अच्छा मिलन माने यहां क्या मिलन माने क्या मिलन में दोनों का मिलना नहीं जैसे राष्ट्र में मिलन किया हमारे गोस्वामी ने उनका जो वर्णन किया प्रेम चीज से जब मिलते हैं विलास युक्त उन दोनों का मिलन ये मतलब है मिलन ये मान लिया कि कृष्ण बंसी वादन किया गोपियों ने घर के अपने पति से ससुर से सास से ये पूछ करके आई कि मैं कृष्ण के यहां जा रही हूं किसी से पूछा नहीं खूब छाप चली आई सदा मिल जाता तो वो छिप करके अच्छा जो छिप करके आया जाता है इसमें कोई वो कहीं दोष है कोई आदमी कोई व्यक्ति काम करता है छिप करके इसका मतलब क्या है कुछ न कुछ जरूर दाल में काला है तो ये सब जितनी की जितनी गोपियां आई छिप करके आएगी तो कुछ गड़बड़ी है अरे अपने पति को छोड़ना इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है ये महापाप ये सबसे बड़ा यहां तक कि अस्पर्ग्यम सबसे भी नीचे चुप करने वाला
और जसस्करण
और जसस्करण
और कीर्तिकरण
ये सब चीजें तो ये तो वो कहा है नहीं ये मत समझो निर्वध कैसा है जिनके आंखों में दाग है अंधे हैं वो दुर्गा शासन मुझसे बढ़कर क्या और पृथ्वी में किसी की आंख नहीं है मैं दुख भविष्य और वर्तमान सब कुछ जान जितना ज्ञान का स्रोत है वो सब हमसे निकला धर्म भी हमारे से निकला है इसलिए कहते हैं तुम्हारा जो हमारे प्रति जो निधन है यह अत्यंत विशुद्ध है इसमें कहीं भी कोई दाग नहीं पूर्ण रूप से स्वच्छ है इसमें मैं तुम्हारा ऋणी हूं क्यों हमारे गोस्वामी जब बतलाते हैं कृष्ण हमसे प्रसन्न हुए संघ ने बाद में कहा कि तुम कुछ क्या चाहते हो किसने ये हमारी सेवा की तो हम कहते हैं ये जान करके उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं ये तो कारिणी हो गए माने किसी की इच्छा को पूर्ण कर देना ही पूर्ण होना होगा। गोपियों ने कृष्ण को प्रसन्न किया, कैसे प्रसन्न किया, लुक छिप करके आए, एक तरह से संसार धर्णाश्रम धर्म के लिए ये महत्व पाप करके इनके पास में आए, जितने बंधु थे सब बंधनों को तोड़ दिया। एक बड़ी भारी नदी थी, बड़ी भारी नदी, और पाप आने वाला और पाप ही आया, इस मर्यादा के नदी को भी पालना, गुरुजनों का जो वाक्य लंघन, ये बेड़ी और पकड़ी को भी उन्होंने एकदम तोड़, और कृष्ण समझा करके कृष्ण ने पूछा, मैं क्या तुम्हारी इच्छा करती हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो गोपियां ने कहा कि आपकी कृपया सेवा हम होती, अरे अपने लिए कुछ मांग तो हम अपने लिए ही मांगते हैं कि आपकी हमको सेवा दी, इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई वर नहीं मांग सकती, तो फिर कृष्ण और भी ऋणी हो जाए, यदि ये वर दे दिया तो और भी ऋणी बन गए, इस तरह से वो ऋणी रही। दूसरी बात, गोपियों ने यदि कहा, अच्छा आप यदि प्रसन्न हैं तो एक बात, जैसे हम तन मन धन से और सब कुछ को छोड़ करके, विश्व को छोड़ करके, पति पुत्र और सब छोड़ करके, केवल मात्र एक निष्ठा से हम आपकी सेवा कर रही हैं, कर रही हैं, उसी तरह से आप भी एक निष्ठ होकर के हमारे प्रति हमारी कृष्ण करेंगे। वहां पर करोड़ों गोपियां हैं और करोड़ों गोपियों ने, करोड़ों गोपियों ने यही एक बात, आप सबको छोड़ करके केवल हमारा प्रति, ऐसा करती नहीं है वो, यदि कर दें कह दें वो जानते ही नहीं, कृष्ण नहीं कह सकते, इसलिए वो काफी नहीं है, इसलिए कृष्ण बहुनिष्ठ हैं। उन गोपियों की तो बात क्या है, इस जगत में जो साधक भक्त हैं, कोई भी साधक भक्त है, कृष्ण राज कर रहे हैं एकदम अविनिष्ठ होकर, अपना उस राष्ट्र को भी छोड़ करके, सब को छोड़ करके, राजा जी का केश संचालन कर रहे हैं श्रृंगार रथ में, अत्यंत विनिष्ठ होकर, उस समय जगत का कोई भक्त कोई भगवान से प्रार्थना करते हुए भजन कर रहा है तो उसकी प्रार्थना को कौन सुनेगा, कृष्ण स्वयं सुनेंगे या अपना प्रतिनिधि देते हैं, क्या करेंगे, वो प्रतिनिधि नहीं मानता है, वो जो सेवक जो भजन कर रहा है साधक भजन, तो क्या करेंगे वो, उनको ही सुनना पड़े, इसलिए कृष्ण बहुनिष्ठ हैं, कदापि एक निष्ठ नहीं हो सकते, इसलिए गोपियां कैसे सब कुछ छोड़ करके, देह की आसक्ति भी छोड़ दिया, अपने मम और मैं और मम सब कुछ छोड़ दिया और एक निष्ठ कृष्ण में हो गए, ऐसे कृष्ण पदार्थ नहीं हो सकते, कृष्ण के वंशी बादल के समय जैसे सब गोपियां दौड़ गई और सब गोपियां एक ही साथ में कृष्ण को पुकारे तो वो क्या करेंगे, एक के पास में जाएंगे ना सबके पास में जाएंगे, उनको सबके पास में जाएंगे, इसलिए बहुत निष्ठ है, इसलिए ऐसा वो भजन कर ही नहीं सकते, आ रहा है कुछ समझ में, इसलिए कहते हैं साधु तुम्हारा यह कार्य है वो साधु हुआ, किस लिए साधु हुआ, पतियों का तो मैं त्यागी भी तब ये साधु, क्यों हमने ये कार्य रखा है, सब कर्म सब कर्म को छोड़कर के एकांत में हमारे शरण, इसलिए यह अभाव नहीं हुआ, नहीं एकमात्र जगत का परम पति हूं, परम पिता हूं, परम माता हूं, सब कुछ मैं ही, विशेष करके मैं ही परम पति माने पालन पोषण करने वाला, पौ प्राण करने वाला मैं ही, मुझसे अतिरिक्त और कोई नहीं, अंतिम सर्वोच्च स्थिति, इसलिए जगत का कोई भी व्यक्ति भगवान का शरणागत होता है तो उसको प्राप्त नहीं करता। सभी मनुष्य जितने भी जीव हैं वो चार ऋणों से आवर्त हैं, पांच ऋण। वो ऋण क्या है?
वो क्या
भूताप्त ऋणन नयन पितृणाम नयन ऋणी च राजन जब सर्वत्मन तो मुकुंद परिहत्य कर्तुम नैन देवत्व देव ऋण ऋषि ऋण
भूतरी
भूतरी
आपकरी
आपकरी
राजा
और
माता पिता ऋण राजा
हे राजन वो हे राजन है
देव ऋण भूत ऋण पितृ ऋण राज ऋण
देवासी आत्मने क्या माता पिता भाई आत्मीय सज्जन किसके अंदर में है और देवरिंद माने देवताओं का देवताओं का ऋण क्या है
कृष्ण बन सकते हैं वो ताप देते हैं
शरीर की रक्षा के लिए वो सब हवा इत्यादि सबका देते हैं इसलिए हमारे कोई देखे और ना देखे देवताओं का और ऋषियों का ऋण भी क्या है अब हम लोग कभी ऋषि का अंदर में नाग है ऋषि और सब संसारी लोगों के लिए ये संहिताएं हैं मनु हारी जागरवल उसके द्वारा हमारा ये सब चलता है समाज और उनके रूम में और हम लोगों के लिए नाग है व्यास है सुखदेव गोस्वामी जी हैं और रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब ये हमारे सब ऋषि इन लोगों का ऋषि होता है हमारे गुरु परम ऋषि है ये सब और देव ऋण ऋषि ऋण और भूतरी 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 माने
प्राणी
एक गाय दूध नहीं देगी ना फिर क्या होगा एक गाय फिर खेत नहीं जोतेगा
खेती
में हाँ आजकल ट्रैक्टर नया निकला है आप उस दिनों के बाद में जब ये सभ्यता एकदम सिविलाइज एकदम सब नष्ट हो जाएगी तो देखूंगी क्या होगा ट्रैक्टर की जो जानने वाले महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े रथी थे ना धनुष बाण चलाते थे और आग लग जाती थी वर्षा हो जाती थी शाम की वर्षा होने लगती थी और क्या अब वो कहां हो गया है यदि मान लिया कि ऐसे ही काशल बनाने वाला ये सब लोग एक महायुद्ध में एक अटम बम में सब नष्ट हो जाए फिर ट्रैक्टर कहां रहेगा फिर वही बैल वाली में फिर घोड़े पर चढ़ करके लोग लड़े न मल्ल युद्ध करेंगे गदा से चलेंगे वो सब चीजें भी ये सब नष्ट और भ्रष्ट होती रहती है किंतु हम लोगों की ये बात ये सब पता है ये सब समय ठीक है अभी कभी तूफान आ गया और कभी कुछ तूफान क्या कर
रहा
था एक मेरा जन्म आप छोटी मेरी बहन छोटी सी अभी वो खुद भी नहीं चलना चाहती पुलिस में करके गोदी में लेने की चेष्टा भले ही लेकर के गोदी में वो दोनों गिर जाए कोई बात नहीं तो वो में भी लग जाएगी किंतु गोदी में लेकर के इसी तरह से घर के जितने लोग हैं ना कभी उसके गोदी में कभी उसके गोदी में कभी उसकी गोदी में कभी उसकी गोदी में कोई कोई लाभ प्यार कर रहा है कोई कुछ पूछा कर रहा है इस तरह से पिता माता भाई बंधु जितने हैं सगे संबंधी सब का हिस्सा है हमारे और दूसरे हैं राजा को राजा नारायण अभी तो मालूम नहीं पड़ता यदि अच्छी तरह से शासन हो तो एक दिन में महिलाओं का चलना भी रास्ते में बंद हो जाएगा और अच्छे लोगों को साधु संतों को चलना बंद हो जाएगा कोई निकल नहीं सकते अच्छे दुष्ट लोगों की भरमार हो जाए जैसे कि वो राजा के समय में हुआ या अभी भी कभी कभी हो रहा है कम से समय में हुआ सब सज्जन लोग भाग छोड़ करके भाग गए इधर कोई सज्जन रह नहीं सकता दुष्ट लोग और वो भी लड़े मेरे साथ खाएंगे और ऐसे कर একদম। इसलिए राजा दारुण इस तरह से हमारे ऋण है। देव का ऋण कैसे चुकेगा? यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा उनका। और ऋषियों का ऋण कैसे चुके? दूसरे लोगों को हम वही शिक्षा के उनसे पाए, वही सब शिक्षा देंगे। आप जो नहीं शिक्षा देगा उनका ऋण बन जाएगा। हमारी परंपरा में ऐसी बात नहीं है, निरपेक्ष सीखो और दूसरों को भी। प्रधान महाराज भी इसी परंपरा में आए, हम सीख लेंगे और किसी को देंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जितना दोगे उतना ही ये बढ़ेगा। इसलिए इस ज्ञान को स्वयं इसमें प्रतिष्ठित होकर फिर दूसरों को भी देना उचित है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, ज्यादा देखो कार्य कहा कृष्ण उपदेश हमारा अज्ञात गुरु बन करके जिसको देखो तुम कहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 उसको देखो और उसको कहने ना देते वो भी दूसरे करेगा। जैसे हम लोग कहते हैं अभी हमने जो बताया कि हरे कृष्ण करना सब दूसरे लोगों को आप सभी लोग कहेंगे। आप प्रतिदिन अच्छे अच्छे आदमी को सज्जनों को यहाँ पर लाएंगे जो कि सबको सुने समझे और करे। नहीं करो कुछ तो अपने संस्थाएं बनाएंगे और धीरे धीरे ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गुरु कार्य ऐसे और भूत भूत मान प्राणी गाय और सब उपकारी जो चीजें उसमें उत्साह चुपता है। माता पिता जैसे तुमको जन्म दिया पालन पोषण किया इसी प्रकार से प्रजा उत्पन्न करके उनका पालन पोषण और उनको सब प्रकार से योग्य बनाकर के कर जाओ। और दूसरा होता है क्या?
ये स्थूल रूप
से और सूक्ष्म रूप में क्या होता है?
भगवान का भजन करें उन लोगों का युद्ध।
जैसे तुमने भगवान का भजन भजन करना सीखा उसी प्रकार से तुम्हारे भजन के प्रभाव से उनका उद्धार है पूर्वजों का। इस तरह से ये और क्या राजाओं का उपकार तो उसी में आता। इसी तरह से सब रूपों से यदि कोई भगवान का भजन करता है तो इन सब ऋणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप भगवान चुका लेते हैं, पैसे चुका लेते हैं। जैसे मैंने किसी को 1000 रुपया लिए, 1000 एक उदान के द्वारा हमारे मुनि महाराज वो गृहस्थ का नाम था सनातन महाराज
दशाधिपा दाता जी।
इनके यहां कपड़े का कारखाना था, उसमें बहुत से नौकर लोग थे जो काम करते थे कपड़े बुनते थे। उनमें एक थे उनका नाम था पूनान, वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उनके यहां कपड़े बुनते थे और उनको ये महीना देते थे। तो इन्होंने इनकी कुछ स्थिति खराब थी इसलिए उनसे 5000 रुपया ले लिया और वो काम कर रहे थे धीरे धीरे चुकाएंगे। तो वो 5000 रुपया देने में चुकने में कम से कम कभी 5-7 वर्ष लग गया। एक बार गुरु जी हम लोगों के साथ में ही सनातन प्रभु जी के घर में, जब घर में गए तो हरिकथा 4-5 दिन हुई तो उन्होंने पूर्णानंद जो थे नाजन भरा मेरी भजन करने की बड़ी इच्छा है, मैं भी इन लोगों के समान में ब्रह्मचारी जैसे भजन कर रहे हैं, मैं भी अब दशाधिकारी बनकर के आपकी सेवा कर दान प्रसव स्वावलंबन करके मेरी इतनी भजन कर। चलो अपनी स्त्री से पूछ लो, हमारी स्त्री जा रही है तब फिर क्यों नहीं चलते? मैंने 5000 रुपया निकाल लिया और जब तक नहीं चुपता तब तक मैं इसके बंधन में हूं। इसने मैं कर सी गुरु जी ने उनको बुलाया सनातन प्रभु, सनातन प्रभु आपके पास में आप क्या ये ऋण है 5000 रुपया आपको लिया आता है तो ये तो भजन करना चाहते हैं और 5000 रुपया मैं आपको इसके बदले में दे दूंगा। महाराज ये क्या करूं, मैं तो आपका कोई रुपये का ऋण आपने उनको परमार्थ में लाया, मैं जन्म जन्म का आचार्य हूं, तो ये 5000 रुपया हमारा यदि इसमें चुक जाता तो मैं अपने को धन्य समझूंगा, इसलिए मैं वो 5000 रुपया हम आपसे पा गया, आप उनको ले गए। बस एक तुम साथी साथ आए और एक दो वर्ष में फिर उन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास का तरफ करते
हैं पूर्णानंद,
फिर उनका नाम हो गया, क्या नाम है, परमात्मा महाराज, परमात्मा महाराज नाम। भगवान के हम सभी ऋणी है ना, और यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं दूसरे का ऋणी है तो वो भी तो भगवान के यहाँ ऋणी है, इसलिए वो भी सब टूट जाता है। ये इतना ज्ञान भी होना बिना सारी संतों से समझ नहीं है, इसलिए कहते हैं जो भगवान भी ऋणी है किनके, केवल मात्र गोपियों के, सब गोपियों के ऋणी है, किंतु और किसी के ऋणी नहीं है, क्योंकि इसलिए कहते हैं स्वकाधिकृत्य है। आप लोग साधु आपके अंदर में कोई वासना कामना नहीं है, सब कर्म मेरा कुछ क्या है, यह आपका साधु कृत्य है, आप कर्म उदार, आप उदारता से ही हमारे इस ऋण से सूच, मैं जानता हूं आप हमारे दोषों को, हमारे त्रुटियों को और कमियों को जो मैं पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए आप सब समय हमको अन्यथा मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकता, यदि आप लोग ऋण कर देंगे तभी मैं ऋण दूंगी, ये तो और भी मैं दब जाऊंगा। एक आदमी कोई ऐसा काम किया और किसी ने उसको क्षमा कर दिया, तो क्षमा करने वाले का कितना बड़ा धर्म में उसका और कर जाता है, उसी प्रकार से गोपियों कि हाँ जब कृष्ण ने ये सोचा कहो मैं इनका ऋणी हूं और कह रहे हैं मां भजन गुर्जर ग्रेवत कला, हमें भजन करने की क्या मां भजन, तुम लोगों ने जो हमारे प्रति अपने दूसरे प्रेम श्रृंखलाओं को अभी जो पीछे बताया उन श्रृंखलाओं को तोड़ तोड़ कर मर्यादा के समुद्र को भी लान कर संविष्य में छेदन कर, संविष्य उसको छेदन कर, हमारे पास में जो आईन प्रति जाति, प्रति जाति मैंने तुम लोगों का ये जरूर हमारे प्रति हुआ उसका मैं ऋण कभी नहीं, लाख देवताओं के जन्म को भी पा करके मैं कभी भी ऋण कभी भी नहीं, वो प्राचीन और एकदम को हम लोग प्रति हो नहीं सकती, जैसे ही ये आज अपने मुख से ऐसा कहा मैं तुम्हारे कोटि जन्मों में भी नहीं चुका, न होना सहज बात है किसी के लिए, अब हम लोग मुखी जीवित बन गई इस बात के द्वारा कृष्ण ने हमको फल दे दिया, इसलिए प्रभु उद्घाटन हो
रहा है कि ये तो कृष्ण ने फल वाली करके हम लोग तो बचाना चाहते हैं तो क्या करें,
पीछे दुर्गा दुनिया होगी तब फिर कृष्ण ने गोपियां एकदम और क्योंकि इसी के बाद में फिर रात आरंभ हो गया, इसी के बाद महाराज ने तो हम तक रात नहीं हुआ था, फिर गोपी आप प्रसन्न हो गई, सोची जय भाई होना हम लोगों के लिए भी सहज नहीं है, इतना नीचे पहुंच जाए ये कृष्ण में इतनी उदारता है, आज उस उदारता के कारण हम पुनः नीति नहीं करते, इसलिए फिर मैं तो कृष्ण किसी प्रकार से समझा नहीं सकते थे गोपियों को, ये उन्होंने सबसे बड़ा जो अहंकार किया किसी के दसीभूत होकर के दीनता पूर्वक इससे बढ़कर के कोई भी थी किसी को शासन के द्वारा आप नहीं झुका सकते, नहीं झुका जाता हूं तुम्हें ठीक कर नहीं, किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया, यहां पर कृष्ण ने समझाया ये बतलाया हम सब प्रकार से अपार तुम्हारा युद्ध का हम सकते हैं, मैं बहुत दीन हूं सबसे छोटा बस गोपना बहुत यही दिन, इसलिए कृष्ण पिता होता है पिता धन क्या मान सकते तो बात करती नहीं सब विषय रशि उन्होंने देखा था कि राष्ट्र होगा नहीं, इसीलिए उन्होंने आगे बताया जगत में सौंदर्य कृष्ण मार्ग रूप दे रहे थे, कृष्ण मार्ग रूप दे रहे थे, बड़े बड़े सामने का इसके बाद में धीरे धीरे रात आरंभ हुआ मंडलाकार में। कृष्ण कैसे हुए? एक गोपी के बीच में एक दीपक, एक तो पहले राधा जी के साथ थी एक, और सब गोपियों के पास भी वो थी दो गुरु, एक राधा के रूप में राधा जी के पास बीच में राधा जी बीच में थी, और सब गोपियां मंडलाकार बीच में उनके साथ, और सब मंडलाकार में गोपियों के साथ में एक एक गोपी मध्य दैवर मध्य में नहीं क्या कृष्ण के लिए कारण दैवर मध्य
कृष्ण
आपको भी ना दैवर मैंने दो बात गौर दो
कृष्ण गोपी
दो गोपी एक तरफ में दो गोपी एक तरफ में बीच में तो गैर गैर होगा कैसे करें दो गोपी है इधर में कृष्ण है इधर में उधर से वाली गोपी इधर वाली गोपी और फिर इधर वाली गोपी और उधर वाली कृष्ण इधर तो दो हुआ उधर और फिर उधर में गैर गैर नहीं समझा
कृष्ण दो गोपी
दो तब से गोपी को पकड़े कृष्ण है और उधर वाले कृष्ण क्या किए दो को उधर से पकड़े तो बीच में दो हुआ नहीं समझो दो हुआ अरे तो कृष्ण एक इधर से पकड़ा तो फिर उसको भी उधर से पकड़ा तो फिर एक गोपी को दो बार कृष्ण पकड़ा है दोनों हाथ उधर वाले हाथ से उधर कौन सा ठीक है नहीं आया समझ में
एक गोपी के अंदर तो कृष्ण हाथे दूध लेता है
मारे एक तुम लोग सब पूछे कौन सा चीज एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है या दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है। अरे ब्रह्मा इस चीज को निर्णय नहीं कर सकते आ रहा हूँ आप हम लोग
कोई रूप जमा नहीं है एक बार ऐसे नृत्य किए कि 300 करोड़ गोपियां हैं एक साथ कहेंगे ऐसे नृत्य कला है 300 करोड़ गोपियों के पीछे कैसे चक्कर का ग्रह मोहन ने कहा
यही तुम भगवान का
और फिर रोज
और फिर यदि वायर वायर नहीं निकलते वायर निकलोगे तब तक ठीक हो जाता है ये दो गोपी उनके बीच में किंतु गयो गयो दो दो गोपी और एक
फिर इसके बाद में कुंडलिका में एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण दिखाया और पिता कुछ कुंड दिखाया
सब तक दोनों भी हो सकता
अलग
पीछे मामलों को अचार्य ने कहा है शुद्ध स्वामी ने
ये
दोनों में
पुण्य नहीं देता
ऐसे सुप्रता या ऐसे धन से उन्होंने कड़ा कौशल से किया है जो ठीक ऐसे ही मालूम इसलिए दोनों ठीक और ये कह रहे हैं तत्रापि सुशुभे ताजी भगवान देवकनिष्ठ मध्य मणिनान है नारायण महामर्क को तत्प्राची सुशुभे कौन सुशोभित किया तत्प्राची मैंने कृष्ण बड़े सुंदर हैं अनुकार यद्यपि सौंदर्य कृष्ण माधुर्य रखे हुई है कृष्ण का जो माधुर्य है उसका गुरु क्या है गुरु किसको कहा चक्का किस पर चीज पर घूमता है पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है ना? कोई चीज के लिए धुरी नहीं रहेगी तो चक्का इधर उधर चला जाएगा इधर धुरी होती है तो धुरी क्या है मैं कृष्ण माधुर्य का उनका सौंदर्य ही है और सौंदर्य किसको कहते हैं 16 चीजों से युक्त होकर के तब ये सौंदर्य रखता है कृष्ण का धीर ललित और वो सब जो गुण हैं उनकी कलाएं हैं उनका पुत्र सुतम है, उनके वो सब सूर्य ये सब यदि गुण न रहे तो ये सौंदर्य भी नहीं होता। उसमें आकरण भी है, आकरण भी है, मंडन भी है, ये सब अलग अलग सब अप्लाय को, तो ये सब मिलकर के सौंदर्य है। यह सौंदर्य ही कृष्ण का सबको आकर्षण करने वाला है और यही माधुरी कृष्ण की समस्त माधुरी मानवता पूरी। इसी तरह से आकर्षण करते हैं और उनका यह रूप समस्त अवस्थों में उसके अनुकूल ही योग होता है, एक ही रूप में नहीं, विभिन्न रूपों में, पांच रूपों में पांच वर्ष प्रकार है कृष्ण एक, जैसा उनका होगा आपको ऐसा मिलता हो। तब प्राप्त कृष्ण अत्यंत सुंदर है किंतु प्रतिदिन संगीता कार्य माधुर्य, कृष्ण का माधुर्य और सौंदर्य और वैदर्भ नित्य की कुशलता, कृष्ण की संपूर्ण भगवत्ता का सा ये सब कब होता है, शांत रस में स्थिर रहता है, दास रस में कुछ बढ़ता है, सख रस में और बढ़ता है, वात्सल्य में कुछ और बढ़ जाता है और गोपियों के संग में पूर्ण रूप से बढ़ जाता है। अभी कुछ बनने का अवकाश है, अभी तक नहीं बतलाया, बतलाएंगे कुछ गोपियों के साथ में परिपूर्ण रूप से इसलिए कह रहे हैं तत्प्राचीन है क्या तत्प्राचीन अपनी शिशु है यानी कृष्ण तो अत्यंत सुंदर है, परम मधुर है, उनमें समस्त गुण है नायक के, तभी गोपियों के साथ में आप ही कृष्ण ईश्वर आत्मस्तर में अपनी शिशु है
सुंदर
अत्यंत सुंदर रूप में मनमत मनमत रूप में यहां पर प्रतिभा हुए। क्या वो भगवान है ना, भगवान अब बढ़ नहीं सकते, वो परिपूर्ण है किंतु यहां पर और भी बढ़ गए गोपियों के साथ में, कभी कैसे बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि तो वही रहेंगे जो है उसके लिए कहते हैं मध्य मंडन हरिनाना, यहां पर देवकी सूत्र का देवकी सूत्र नाम गोकुला का दूसरा नाम है देवकी, इसलिए मध्य मणिना मध्य में मणिया बहुवचन मणिना
मणन मणिना
और हिमानंद मैंने ये तुलना किया हिमानंद मणिना अर्थात स्वर्ण की मणिया मैंने पीली पीली खूब सुंदर ये बहुत बहुवचन और महामरकत ये महामरकत कौन है तो एक वचन हुआ है और वो सब क्या है
बहुवचन
है बहुवचन तो ये एक ही कृष्ण वैसे ही सुशुभ है ऐसे ही प्रकाशित हुए जैसे बहुत सी मणियों में एक ही मकर मणि किसको कहते हैं इंद्र में नीलमणि नीलमणि मैंने सोने से भी अधिक सुनती है उस कारण कुछ नीला रहता है और एक होता है इंद्र नीलमणि कृष्ण है इंद्र नीलमणि इंद्रमाणी में है सबसे श्रेष्ठ मणियों में भी सबसे श्रेष्ठ जो है जो जितनी भी मिल सकती है मणियां उन सब मणियों में है नील वो है इंद्रनील और इंद्रनील मणि से भी श्रेष्ठ वही इंद्रनील मणि यदि बहुत से सोने सुंदर सुंदर के पास में रख दी जाए तो उनकी प्रभाव उस पर चमक है किस तरह
प्रभाव
और इंद्रनील मणि का जो नीलापन है वो कुछ उनके प्रभाव के पीठ पर पड़ जाने से कुछ छिप सी जाती है उस समय शोभा उसकी और वासना बढ़ जाती है तब उसको लाते हैं मरकत जैसे एक सुंदर आदमी है अत्यंत अत्यंत सबसे सुंदर लड़कियां हैं, बहुत सुंदर, उनके साथ में खड़ा क्या हो जाए तो ही सुंदर दिख पड़ेगा, सुंदर के साथ में सुंदर दिख पड़ेगा। और कृष्ण है तो नील, इंद्र नील है और उसकी गोपियों की छाया हेमानंद, हेम के समान जो गोपियां हैं वो हेमवरी हैं, उनकी आभा इस इंद्र नील मणि पर पड़ेगी, नीम का भाव कुछ कम गया और वो छाया उसमें प्रभाव कुछ रम गई और वो अक्सर उनको उज्जवल हो कृष्ण उसको वही कृष्ण है। जब वो रहते डॉक्टरों के यहाँ सखियों के यहाँ तो वही इंद्र नील बन जाते, उनकी सवाल कमी नहीं होती,
बरकत नहीं।
आज गोपियों की वजह से उनके इस आभा पड़ने से
बरकत होती है।
दूसरी बात, कृष्ण विदग्ध हैं, चतुर हैं, ये बात ठीक है, सखा में भी बड़ी विदग्धता होती है, किंतु सखा में उतनी विदग्ध नहीं होंगे जितना सखियां, इसलिए सखियों के साथ में विदग्ध होने के लिए कृष्ण को टॉप मोस्ट होना पड़ता है, इसलिए उनकी सब चीजें निखर आती हैं, तब वो अत्यंत अधिक विदग्ध हो और अधिकांश समय में वो ज्ञान जुड़ करके कहो या तकलीफ में वो पराजित हो जाते हैं उनसे, उनको इसलिए सुंदरता में भी यहां पर जो उनके छवि के द्वारा आक्रांत हो गए हैं, ये कृष्ण का जो रूप और सौंदर्य है ये सबसे सुंदर गुप्त के द्वारा भावा होने के कारण, इसलिए कृष्ण एक है। तत्रा बीच में राधा जी है, राधा जी के इतनी क्षिप्र गति से चल रहे हैं, साधारण लोगों ने यही प्रकाश किया है कि एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, और किसी ने कहा कि दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण है दोनों ही थी, क्योंकि दो गोपियों समेत दो को आलिंगन किया ना, उधर वाले कृष्ण है वो भी दो दो गोपियों का आलिंगन किया। अभी ऐसा हुआ कि एक गोपी को दोनों तक इधर से भी कृष्ण हाथ डाल रहे हैं उधर से भी हाथ डाल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों प्रकार से उन्होंने आत्मबद्ध एक ही साथ में इतनी क्षिप्र गति से चल रहे हैं कि बीच में भी दिखाई पड़ रहे हैं, साथ साथ में इनके पास में भी, जैसे एक
औलाद का प्रवर
एक अग्नि जरा दिया आग कुछ लकड़ी और उसका एक हाथ में रख करके और ऐसे दूर से घुमाया तो वो कैसा दिखता है,
आपका चक्का जैसा,
वो आपका चक्का जैसा दिखता, किंतु आपका चक्का तो नहीं, वो तो एक लकड़ी में आग है, किंतु इतनी जोर से घुमा दिया ना मालूम होता है ये चक्का, और जब घुमाना करके ऐसे ऐसे कर दिया ना तो इतने इतने दूर तो आप तो एक ही जगह स्थिर है, किंतु ऐसे ऐसे कृष्ण एक ही होकर के भी सबके पास में क्षिप्र गति से, यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो कृष्ण का पाठ भी मानना पड़ जाएगा, तो कृष्ण का तो नाग भी ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान की विशेषता क्या है, इसलिए जी ने और कह दिया ऐसा लोगों को मालूम पड़ा कि कृष्ण उतने ही हो गए जितनी गोपियां थी, अब उसको भी ऐसे ले राधा जी के पास। अब कहते हैं प्रभु कहे यही साध्यावधि सुनिश्चय, इसलिए कहा यहां तक गोपी प्रेम की बात चल रही, गोपी प्रेम में चल रही है तो कृष्ण की बात क्यों लगे, क्यों लाए, लाने की जरूरत क्या है,
उसको कृष्ण भी प्रेम कर रही है, उसको किसको प्रेम करेंगे,
यहां पर खूब घोर से हवा चल रही है, तो हमने कहा कि देखो भाई ये पेड़ कैसा क्यों रहा है चारों तरफ, तो पेड़ के हिले में से हम मान करते हैं जो हवा जोर से चल रही है कि कम चल रही है कि नहीं, हमने कहा कि ये पेड़ हिल रहा है, तो हम पेड़ हिलने के लिए कहा है, हमको ये बताना है ये हवा खूब जोर से चल रही है, उसके बाद हमने कहा कि जैसे भाई ये पेड़ खूब हिल रहा है, भूख से इधर उधर हो रहा है, फिर इतनी जोर से हवा थी कि पेड़ टूट गया, तो और भी ये मालूम होता है खूब जोर से आधी थी। उसी चीज से जब जिनके प्रेम के कारण में कृष्ण भी लुभक रहे हो इधर उधर बह रहे हो, उनको भी पुल किनारा नहीं मिलता है, तो समझो कि वो प्रेम कृष्ण को पार नहीं। कृष्ण को इतना करना पड़ा कि एक एक गोपी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक एक गोपी के पास में जाना, इसलिए गोपियों प्रत्येक गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा है जो सब लोगों ने कृष्ण को भी वशीभूत कर दिया, इसलिए इनका प्रेम इतना उच्च कोटि का है कि कृष्ण को भी वशीभूत कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए यहां पर इस श्लोक में भी गोपियों के प्रेम को भी बदला है, जिसके अंदर में जैसा प्रेम होता है कृष्ण के अंदर में भी उसके प्रति वैसा ही प्रेम होता है, किंतु कभी कभी कृष्ण का प्रेम
दब जाता है,
दब जाता है, क्यों? यह कृष्ण की बड़ी बड़ा आयुण है, इसीलिए वो स्वयं अपने भक्तों से अपने को छोटा बना सकते यही सत्यागत, वो कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं। हाँ, और मैं समझा यही सत्यागत कृष्ण ही कह रहे हैं, महाप्रभु से जाते हैं कि नहीं जाते। और उसमें तो देखो एक चीज सीखना अलग है और टेस्ट करना अलग है ना? कुछ लोग हैं रसोई बनाना नहीं जानते, रसोई बनाने के बाद अरे भाई ये ठीक नहीं जाती, अच्छा भाई इसमें क्या कमी है, तो वो बतला नहीं सकते कि क्या चीज की कमी है, थोड़ी सी की कमी है वो थोड़ा सा चीज इसमें दे दिया जाए, नमक की कमी है थोड़ी, बस नमक उसमें थोड़ा सा दे दिया बस एकदम टेस्ट, तो जो बनाने वाला वो नहीं जानता है, जो टेस्ट कर रहा है वो तो टेस्ट कर रहा है, कृष्ण टेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रेम कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि भाई ये कैसे स्पेस टेस्ट है, दुनिया उस चीज के साथ मसाला आज वहां पर पता है। हाँ, आज समझ लिया है, अब तक
क्षमता
क्या क्षमता को जानते हो, मैं अब मैं निश्चित सुनिश्चित कृष्ण रूप में पूर्ण कर, वो उन्होंने प्यार किया उन्होंने भी प्रेम किया, उन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रेम किया, सखाओं ने प्रेम किया उन्होंने प्रेम किया, भैया ने प्रेम किया उन्होंने प्रेम किया, उस समय क्यों टेस्ट में लगे कभी कभी ये सब हमारे गोस्वामी के ग्रंथ में ये सब का वर्णन किसी गोपी श्रीमती जी से पूछ रहे तुमने कैसा आता था, हमको पता ही नहीं, मैं गई हूं हमसे मिली और बसरा अपने गोपी में, अच्छा तो ठीक है तुम दूसरे दिन शिक्षा करते हैं, हमको तो शिक्षा तुम जाना तुम बड़ी बुद्धिमती है तुम सीख कर जाना आपका बतला ऐसे कृपा कर कहो यदि आगे पिछू हो, कहते हैं ये मैं समझा बहुत प्रसन्न हुआ समझ गया, किंतु आगे किसे कुछ पर हो क्यों राय कहते हैं यहां आगे पीछे कौन है न जाओ जन एक दिन नहीं जाई आते त्रिभुवन, त्रिभुवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस चीज को पूछ सके नहीं जाता, आज उनको आश्चर्य है ये ऐसा भी व्यक्ति है जो कि ऐसा प्रश्न कर सकता है, सभी सभी प्रश्न नहीं कर, हम लोग कहें तो कोई प्रश्न ही करना नहीं, आप ऐसे बैठ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, यहां के फिर यहीं पर छोड़ जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं फिर वहां से आरंभ करते हैं, फिर जाते हैं तो सब छोड़ देते हैं, रात में चिंता विधय में कुछ भी आता है जिसको आता है जो सब कुछ, इसी का नाम अनुशीलन है, जो सुना उसको विचार किया अपनी चीज बना ली तब तो ये थी, और नहीं तो सुन करके छोड़ करके चले गए, या सुना कोई भैंस के आगे बीन बजा रहे भैंस बैठ पक जा रहे बीन बज रहा है बीन बा जा और भैंस बैठ करके बाजू मारू को पूरी सीखता है कि क्या बज रहा है क्या बज रहा है, सूप से बज रहा है कि ताल से बज रहा है, ऐसे सुनो संतो इसमें प्रवेश करो, सब आदि अनुसार कल्प
नमो महावचनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरवस्तुते
कृष्ण की अत्यंत बल्लभा
रास्ता ही जैसे कृष्ण को सर्वोत्तम रूप में तैयारी हो, उनका पुण्य भी वैसे ही उनके लिए राधाकुंड भी जब उनको कितना प्यारा है, तो ये राधाकुंड और राधा स्वयं दो एक अभिन्न राधाकुंड की पिता ने राधा जी तुझे ऋषि पुराण में ऐसा लिखा और भी सुना भागवत में उदाहरण लेकर के बतला रहे हैं। कन्या राज्य को मूलम भगवान हरिदेश्वर जन्म विहार गोविंद सिंह को ज्ञान कन्या राज्य को मूलम भगवान हरिदेश्वर अनया माने हाथ बिखरा करते थे अनया ये जो गोपी है जो कृष्ण के साथ में जा रही है जिनके चरण सचिन कृष्ण के चरणों के साथ में वो भगवान की कृष्ण की अत्यंत प्यारी उसने भगवान नारायण इत्यादि की उपासना ऐसे की है जो कृष्ण की अत्यंत अपनी जारी बनी जिससे कृष्ण उसको अपने साथ लेकर के कहीं अन्यत्र निर्जन स्थान में गए सब गोपियों को ठोक करके इसको देकर के यहां पर गए। ये तीसरे अध्याय रात अध्याय में दूसरे अध्याय इंग्लिश पृष्ठभूमि का ये पूर्णिमा को वंशित धनी और सब गोपियां छोड़ करके आगे कृष्ण के पास थे। इसके बाद में रात प्रारंभ हुआ और रात में कृष्ण उनके दोनों के बीच में दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण एक गोपी के रूप में नित्य इत्यादि और सबका सौभाग्य दिख रहा है। इस प्रकार औसत से निकल दिया है प्रत्येक गोपियां को समझ रहे हैं कि हमारे साथ में ही है नृत्य कर रहे हैं साथ में यही देखा कि बीच में जैसे माला के बीच में एक क्या होती मन लटका
लटको
लटे जैसे हाथ और हाथ में एक नीचे में पान के जैसा तो ऐसे ही रात हो रहा था उसके बीच में एक गोपी है राधा और चारों तरफ में और सब करोड़ों गोपी है
तीन सौ करोड़
इसलिए दिया कि जैसे असंख्य उनकी गिनना नहीं है इसलिए 370 बीच में राधा और कृष्ण है और चारों तरफ में भी कृष्ण गोपियों के साथ में है। उस समय एवं भगवत तो उस समय में कृष्ण राधा जी के साथ में तो नित्य कर ही गए गोपियों के साथ में नित्य कर और उनके पसीने हुए तो अपने पितांबर से उनको भी पूछ दिया उनको भी और जो विलास इत्यादि हैं नित्य की दृष्टि से हाथों में हाथ लेकर इस प्रकार से नित्य इत्यादि सब गोपियों के साथ में सभी प्रेम में डूबी हुई और अपना या परम सौभाग्य समझ रही है कि आज कृष्ण हम लोगों के साथ में सबके साथ में समान रूप से नित्य है। उसमें किंतु गोपियों ने देखा कि कृष्ण मेरे ही साथ में है और किसी के साथ में नहीं, वो इस प्रकार से सौभाग्य मदने मतमाने मतवाली हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा जो पातशाली गोपी के साथ में भी नित्य कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि केवल हमारे साथ ही में वो नित्य कर रहे हैं और हमारा ही सौभाग्य वर्धन कर, किसी भी नहीं देखा। राजा जी ने देखा हरा कुछ दिन के बाद, अरे उसके साथ में तो देख रहे हैं, फिर दूसरे पर नजर बनी तो उसके साथ भी देखा, फिर तीसरे के साथ में देखा, सबके साथ में अलग अलग देखा, उसे ये तो बड़ा ठीक है। सब और भीष्ट और लंका तीन शक्ति द्रोपा कर छिप करके एक से प्यार में प्रेम रहने पर भी, जब उसे छिप करके उससे भी प्यार करता है तो ये सत्य है। और भीष्ट है न ढीठ दूसरों के सामने भी दूसरों से मिलता है, लंपक तो लंपक ही है। इस तरह से तुमको देखा कि हमारे सामने भी हमारे साथ ही नित्य कर रहा है, और जब उनके सामने देखा तो उनके साथ उनके साथ ही पड़ा, ठीक है, तो देखकर के साथ ही साथ हमारे साथ भी और उनके साथ भी। कहते हैं मैं तुमको सबसे अधिक प्यार करता हूं और इधर देख रहा हूं उल्टा देख रही हूं, एवं भगवतः कृष्ण लक्ष्मण महात्मा। ये गोपियां साधारण नहीं, ये जो महात्मा ऐसी है महाभागा का महाभागा अक्षण भगवान होकर के सर्वसाधारण होकर के ये सबके साथ में नित्य पारायण हूं या सबके इच्छाओं को पूर्ण करें, क्योंकि सभी प्यार में है कि कृष्ण हमारे साथ ही नित्य कर, कृष्ण को अकेले अपने साथ में देखना है। ब्रज में और द्वारका में लीलाओं में अंतर, माधुर्य और ऐश्वर्य लीला को कहते हैं जिसमें नवलीला को अतिक्रम करके जो लीलाएं वर्तमान होती हैं उनको ऐश्वर्य लीला, कोई भी मनुष्य उस काम को नहीं कर सकता है, ऐसी भगवान की लीलाएं जब प्रकटित होती हैं तो उनको कहते हैं ऐश्वर्य। उसमें ऐश्वर्य हो और न हो
प्रकृति,
किंतु नवलीला के अनुरोध ही जब लीलाएं होती तब उसको जरूरी नहीं है कि उसमें आश्चर्य रहे अथवा न रह सकता है उसको, किंतु मधुर्य के द्वारा अच्छा भी उसमें प्रधानता आश्चर्य नहीं रहे तब तो वो माधुर्य न मिला था किसी प्रकार से
अतिक्रमण नहीं
अतिक्रमण न हो। अब इसमें एक ही साथ में हजारों गोपियों के साथ में करोड़ों गोपियों के साथ में जो कृष्ण दिख पड़े ये क्या शब्द हो गया, इसलिए यहां पर भगवान दिखा एवं भगवता कृष्णा कलब्धमान। कृष्ण ने सबको मान दिया एक साथ में, ये नवलीला के रूप में ये संभव पर नहीं हो सकता, किंतु है नवलीला ब्रज में नवलीला ही हो ऐश्वर्य में लीला नहीं। किंतु एक बात ऐश्वर्य छोड़कर के माधुर्य जब भी होता है तो वो क्या हो जाएगा, लौकिक लीला होकर के उसमें काम आ जाएगा, इसलिए ऐश्वर्य रहना जरूरी है, किंतु वो ऐश्वर्य कभी छिप करके रहता है कभी प्रकट होकर रहता है, बस इतना ही नहीं। कृष्ण के समस्त लीलाओं में किसी न किसी में ऐड कर देते जरूर ऐड कर किंतु वो कभी प्रकट रूप में है कभी अप्रकट ऐश्वर जी छिप करके कभी भी तो अपना प्रभु की सेवा करना चाहता है जैसे बाद मुक्ति करता है इसलिए जो माया कृष्ण को जानने नहीं देती और उनके अज्ञात कारण ही ऐश्वर्य को प्रकाश करके कृष्ण की इच्छा के अनुरूप वो कार्य करा देता है इसलिए यहां पर कृष्ण को पता नहीं कृष्ण भी नहीं जानते और उनके इतने स्वरूप शब्दों के साथ में अथवा कृष्ण ने क्षिप्र गति से आवाज चक्र की भांति एक ही कृष्ण एक ही समय में सबको उनके पास में दिखे दूसरों को उनको कृष्ण को एक ही
रास में तीन प्रकार नृत्य होते हैं एक पुलिस नृत्य तांडव नृत्य और लक्ष्य पुलिस मैंने मंडली नृत्य तांडव नृत्य पुरुष नृत्य और लक्ष्य मैंने होते स्त्री नृत्य तो तीन प्रकार के नृत्य में तीनों प्रकार का वहां पर कहते हैं कि दो दो गोभी के बीच में दो दो गोभी छी है दो दो गोभी के बीच में एक तब ये तीन जने हो जाते हैं और एक एक गोभी के साथ में एक एक
ये जो प्रकाशित हुआ ये जो माया के प्राप्त भगवान ही हो किंतु कृष्ण ये कभी कृष्ण को भी पता है जैसे मैं एक ही सबको के साथ में किंतु जो माया प्रभाव से ऐसा दिख पड़ा ये सबके साथ एक दो की एक वैसे ही लक्ष्मणा महात्मा मन लाखिया इन गोपियों उस कृष्ण से जो भगवान क्या मान लाखिया फिर मैं थक गई पैर दबा दू या उसी नित्य में ही कौशल से जब उनके चरणों की तरफ में झुक गए पैर को दिया हो उनके पसीने बोध पूछ दिया अपने पितंबर से बात कर रहे हैं जब वो कीर्तन पंचम सुर में कर रहे हैं और वो सप्तम सुर में उसने किया वाह 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 साधु साधु कर ये सब मानव को लाभ करके और वो एकदम मन में भूख कर रहे जब हमारे समान और कोई नहीं और उनका ऐसा रहना उचित नहीं है आत्मान मेनी रे स्त्री ना मानिन्यो अधिकम भू भू इस पृथ्वीभर में यहां पर सब जगह हमारे समान कृष्ण की कोई क्रिया नहीं है इस प्रकार का अभिमान के अंदर में तापम तत् सब सब मतम विक्षमान सती प्रसमाय प्रसादाय तत्परणम कर उनका ऐसा सौभाग्य मत देख करके उन गोपियों अरे अब तो ये राधिका जी से भी अपने को ललिता विशाखा जी से भी ये सब अपने को ये समझ रही हैं अभी एक एक स्वतंत्र रूप में और कृष्ण का सबसे अधिक प्रिया मैं हूं ऐसे अभिमान में ये मतवाली होगी और तो दूसरों को ये तुच्छ एकदम समझती इसलिए किसी के साथ में यह रात